मैं संधि कराने के लिए आया कि पांडवों को एक प्रकार से उनका हक दे दो। दुर्योधन ने इनकार कर दिया। उस वक्त में आपको धर्म ने सूझा और छह महारथी मिलकर के एकले अभिमन्यु को तुमने मार डाला। क्या ये तुम्हारा धर्म है? जब उस समय में तुम्हारे को धर्म की तरफ ख्याल नहीं गया, अब मरने के समय तुम्हारे को धर्म याद आता है, ये प्रारब्ध की बात है तुम्हारा। बहुत एक प्रकार से ये भी अच्छी बात है जो इस समय में तुम्हारे को धर्म याद आया, तो अब वो धर्म तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तुम लोग धर्म का पालन करते तो वो धर्म तुम्हारी रक्षा करता। अब एक प्रकार से अपने प्राण बचाने के लिए और तुम ऐसा जो कहता है, अब ये तुम्हारे प्राण बचने के नहीं है। इससे एक प्रकार से बात खरासा हो गई कि युद्ध की कानून जो वो लोग भंग कर चुके थे, इस वास्ते युद्ध के विषय में धर्म की दुहाई वे नहीं दे सकते। उनका धर्म धर्म चिल्लाना है तो व्यर्थ है, अपने स्वार्थ के लिए धर्म धर्म चिल्लाना है। तो ये बात अर्जुन की भी समझ में आ गई। अर्जुन ने भी सोचा कि मैं कर्ण के वचनों को धर्म मान लेता तो मेरी गलती समझी जाती, भगवान जो कहते हैं वो ठीक है, वही धर्म है। तो भगवान का ये कहना कि अर्जुन मैं तेरे को ये सब व्याख्यान दिया तू समझा कि नहीं, तेरा मोह नाश हुआ कि नहीं। तो भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने कहा कि नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात मैं अच्युता स्थितोष्मि गत संदेह कृष्य वचन। ये बात कही कि नष्ट मोह है, मेरा मोह नाश हो गया और मैं स्मृति को प्राप्त हूँ। अब कोई एक प्रकार से स्मृति विभ्रम नहीं हूँ, मैं अब सावधान हूँ और मेरी जो शंका है, मेरा जो संदेह है, वो सब दूर हो गया आपकी कृपा से। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो भगवान की आज्ञा का पालन करना बड़े श्रद्धा और प्रेम पूर्वक की वही तो भक्ति है, वही शरणागति है। तो अर्जुन ने वैसा ही फिर किया। तो समझना चाहिए स्त्रियों के बीच के मां कि जो अर्थ बताया गया है, एक यही अर्थ एक प्रकार से 58 जाके 66 श्लोक का है। नारायण 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 श्रीमल नारायण नारायण
यही है। जैसे मनु जी ने कहा दृष्टि पूतं निषेध पातं वस्त्र पूतं त्रिवेद जलम शास्त्र पूतं वदेत वाक्यम मन पूतं समाचरेत। इन्हें इस श्लोक में चार चरण है और एक ही चरण में एक एक बात कही है कि दृष्टि को देख करके पैर रखना चाहिए, माने दृष्टि को पवित्र करके संशोधन करके अच्छी तरह से देखने में कि भूमि पवित्र है ना। मतलब ये है कि कोई जीव की हिंसा न हो जाए, कोई मैले पर पैर न टिक जा और वस्त्र को पवित्र करके जल पीना चाहिए, यानी एक प्रकार से कोई वस्त्र मैला न हो तो शुद्ध जो वस्त्र है उसे छान करके आपने जल पीना चाहिए। और वचन बोले तो शास्त्र को शोधन करके वचन बोले, जैसे भगवान कहते हैं सत्यं प्रिय हितं से, वचन सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए और हित का बोलना चाहिए। और समझो कि सोच करके बोलना चाहिए, थोड़ा वचन बोलना चाहिए, मितभाषी होना चाहिए। तो वाणी को शुद्ध कर करके और शास्त्र की पवित्रता से वचन बोलने चाहिए, यानी शास्त्र के मां जो वचन बतलाए हैं कि भी ऐसे वचन बोलने चाहिए जिन वचनों के बोलने से किसी की हिंसा न हो, जिस वचनों के बोलने से कहीं अशुद्धता न घट जा, कठोरता न घट जा, फालतू बात न कही जा,
प्रकार से थी, शास्त्र को दृष्टि में रख करके वचन बोलने थी, मन को संशोधन कर करके आसन करने थी, किसी के साथ के वहां हम आसन करें तो मन को शुद्ध करके आसन करने थी। मन के भीतर के वहां जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये उनके वहां अपवित्रता है मन, तो इस अपवित्रता को दूर करके वचन बोले और अपवित्रता को दूर कर करके सबके साथ में आसन करे, सबके साथ में व्यवहार करे। व्यवहार करने के समय में ये ख्याल करना चाहिए कि हमारे मन के भीतर में कोई प्रकार का पाप तो नहीं है, मन में तो कपट और बार का व्यवहार हम एक करें, ये ठीक नहीं। मन स्वार्थ को त्याग करके सबके साथ में व्यवहार करना चाहिए, उससे व्यवहार सुधर जाता है। अहंकार को त्याग करके, क्रोध को त्याग करके सबसे व्यवहार करना चाहिए तो वो व्यवहार उत्तम दर्जे का होता है। इसी प्रकार से थी हम लोगों को हरेक काम के बीच के मां समझो कि विचार करके अपना जो अमूल्य जो समय है उसको लगाना चाहिए। समय जो है ये बहुत ही दामी है। जैसे हम जो कुछ बोल रहे हैं या मशीन उसको पकड़ लेती, तो उनको सोच करके बोलना चाहिए क्योंकि जो कुछ बोलेंगे वो ही पकड़ा जाएगा। जैसे समझो कि राजनीति के विषय में व्याख्यान देने वाले व्याख्यानदाता खूब सोच करके बोलते हैं कि ऐसा वचन न हो कि जिसमें गवर्नमेंट के विरुद्ध वे हमको पकड़ ले। इसी प्रकार हम लोगों को ये विचार करना चाहिए कि भगवान के विरुद्ध हो ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए। सुनने में भी ऐसी बात ही रहनी चाहिए जो कानों से हम सुन रहे हैं, तो ऐसे वचनों को सुनना चाहिए जो भविष्य में हमारे लिए लाभदायक हो। जैसे या मशीन एक प्रकार से शब्द को पकड़ती है, ऐसे हमारे दोनों कान शब्दों को पकड़ लेते हैं। जैसे शब्द बोले जाते हैं वैसे ही हमारे हृदय के बीच में अंकित हो जाते हैं, जैसे इस मशीन में अंकित हो जाते हैं ऐसे हमारे हृदय में उसके संस्कार जम जाते हैं। तो कानों से अच्छे शब्द सुनने चाहिए जो हमारे इस लोक और परलोक में हितकार हो। इसी प्रकार से थी हमारे नेत्रों के सामने दृश्य भी अच्छा रहना चाहिए। हम पुस्तकों को पढ़ते हैं तो ऐसे पुस्तक ही पढ़ने चाहिए जो हमारे हितकर हो, इस लोक और परलोक में हितकर हो, ऐसे पुस्तक ही पढ़ने चाहिए। ऐसे पुस्तक नहीं पढ़ने चाहिए कि जिनके बुरे संस्कार हमारे हृदय में जमे। जिन पुस्तकों में अश्लील बातें लिखी हो या नास्तिकपन की बातें हो जो महान हानिकर हमारे लिए हो, ऐसी पुस्तक कभी पढ़नी नहीं चाहिए। पढ़ने से तो उसके संस्कार हृदय के मन जम जाते, और बाहर के पदार्थों के देखने के समय के बीच के मां हमारे नेत्रों के सामने अच्छे अच्छे दृश्य रहने चाहिए। हम भगवान श्री राम का दर्शन करते हैं, भगवान श्री विष्णु का दर्शन करते हैं, शिव का दर्शन करते हैं, तो उनके दर्शन करने से ही उनके चरित्रों की समृद्धि हो जाती है, तो इनसे हमको बहुत लाभ होता है। हम महात्मा पुरुषों के दर्शन करते हैं और उनके जो अच्छे जो गुण हैं, अच्छे जो उनके चरित्र हैं, उनके हमारे हृदय के वहां छाप पड़ती है। तो देवताओं के, महात्माओं के और ईश्वर कोटि वाले ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य आदि जो है, और परमात्मा की जो कि साक्षात समझो कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इति से हम जैसा समझते हैं उनका दृश्य हमारे नेत्रों के सामने रहना चाहिए। भगवान श्री राम श्री कृष्ण ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है तो उनको देखने से ही उनके गुणों का उनके चरित्रों का लक्ष्य हमारे हृदय के ऊपर पड़ता है और वो अंकित हो जाता है। जिन पर हमारी बुरी दृष्टि है ऐसे पुरुषों का हम दर्शन करते हैं तो बुरे भाव हमारे हृदय में जमते हैं। जिनको हम खराब आदमी समझते हैं तो उनका दर्शन करने से उनके मन जो हमारी ये बुद्धि है कि मैं ये बुरे भाव है ये एक प्रकार से बुरे लक्षण है तो उनके दर्शन करने से उनका फोटो हमारे हृदय में प्रवेश होता है और साथ साथ के मैं उनके आचरणों के अवगुणों के फोटो भी प्रवेश होते हैं तो एक बुरे संस्कार हमारे हृदय में जम जाते हैं। नेत्रों से ऐसा दृश्य देखना चाहिए जिससे हमारे हृदय में अच्छे संस्कार पड़े। इसी प्रकार से थी हमारे हृदय के मां जो दिन भर संकल्प आते रहते हैं उनकी तरफ भी ख्याल रखना चाहिए कि फालतू हमारे हृदय में संकल्प नहीं होने चाहिए। जो हृदय में फालतू जो संकल्प होते हैं ये तो एक प्रकार से थी हृदय में मैला ही जमता है। हमको साक्षी होकर के रहना चाहिए कि हमारा मन क्या काम कर रहा है और इस बात का भी हमको ध्यान देना चाहिए कि हमारी बुद्धि के बीच के मां क्या क्या दोष है। जितने दोष है उनको हटाना चाहिए और गुणों का संग्रह करना चाहिए। बुद्धि के अंदर के वहां जो चंचलता है बुद्धि के अंदर जो मैलापन है बुद्धि के अंदर जो अज्ञान है ये सब हमारे लिए खतरे की चीज है। तो जैसे हम घर को साफ करते हैं इसी प्रकार से थी हृदय को साफ कर लेना चाहिए। घर को साफ करने के लिए जैसे बुहारी है और वस्त्रों को शुद्ध करने के लिए जैसे साबुन है इसी प्रकार से थी मन और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए भगवान का भजन और ध्यान है। और मन में अच्छे अच्छे भाव भरने से जैसे ईश्वर की भक्ति और उत्तम उत्तम गुण क्षमा दया शांति समता संतोष सरलता आदि उत्तम उत्तम भाव ये बहुत ही पवित्र चीजें हैं। इनका संग्रह करना चाहिए हृदय के बीच के मन ये ख्याल रखना चाहिए कि मन क्या कर रहा है। जो संसार के बुरे जो चित्र हैं उनको यदि मन इकट्ठा करता हो और दस भावों का संकल्प करता हो तो उनका एकदम त्याग कर देना चाहिए। पहला के बहुत से जो पदार्थ देखे हुए सुने हुए हैं उनकी ये मन जो उनको स्मरण करता है तो उसे ये ख्याल करना चाहिए कि ये हमारे लिए लाभदायक है या नुकसानदायक। अच्छी वस्तु का तो स्मरण करना हमारे लिए लाभदायक है और बुरी वस्तु का स्मरण करना हमारे लिए घातक है। शास्त्रों में गीता रामायण भागवत महाभारत आदि ग्रंथों के बीच के मां हमने जो अच्छी अच्छी कथाएं पढ़ी हैं जो अच्छा जो उपदेश पढ़ा है उस उपदेश की बातों को, शिक्षा की बातों को याद करना चाहिए, उसको पुष्ट करना चाहिए। और जो फालतू बातें हैं उनका कभी समझ नहीं करना चाहिए। विचार करके आप देखोगे तो अध्यात्म विषय की बातें तो बहुत कम मिलेगी, ज्यादातर स्वार्थ की बातें मिलेगी, उससे भी और अधिक जो है तो फालतू बातें मिलेगी जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है। तो फिर हमारा मन उसको क्यों चिंतन कर रहा है, उसकी उसके विषय में यह बात है कि मन की आदत खराब हो गई और संसार के बीच के वह आसक्ति है और मन की जो क्रिया है फालतू उसमें भी उसकी आसक्ति है। जैसे जो बालक होता है और फालतू काम के वहां खेल कूद के वहां उसकी स्वाभाविक आसक्ति रहती है, इसी प्रकार से यह मन भी एक बालक के समान है, इसकी भी इसी प्रकार से थी बुरी आदत पड़ी हुई है। तो इसके लिए विशेष चेष्टा करनी चाहिए। एक छोटी सी कहानी है कि एक बालक था, उसकी बहुत भारी बुरी आदत थी। वो जब अवकाश पाता बालकों के वहां खेल कूदने के लिए चला जाता। उसका जो पिता है वो निगरानी रखता, किंतु फिर भी अपने पिता को धोखा दे करके और वो लड़कों में चला जाता। फिर पिता ने जो एक आचार्य है उसके पास में जाकर के कहा कि महाराज ये लड़का बड़ा दंड हो गया है और इस पर कृपा करके अच्छी शिक्षा आप दो। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये उदंड है, इसकी निगरानी तो आप रखिए और शिक्षा इसको मैं दूंगा। इसकी जो खाली कर दी ये काम तुम्हारा है। पिता ने स्वीकार कर लिया। पिता तो लड़के को समझा देते हैं कि तुम गुरु जी के पास ही रहना, आचार्य जी के हुक्म का पालन करना, ये जो शिक्षा की बात है उसको अच्छी प्रकार से सुनना और मनन करना और धारण करना और काम में लाना। लड़के ने भी ये बात स्वीकार कर ली कि बहुत अच्छी बात है, किंतु लड़के की भीतर की नीयत अच्छी नहीं। पिताजी थोड़ी बार के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं या दूसरे काम में लग जाते हैं तो लड़का भाग जाता है और खेल कूद के मन लग जाता है। पिता संभालता है तो लड़का वहां मिलता नहीं। आचार्य जी से पूछता है तो वे कह देते हैं ये तो तेरी जिम्मेवारी का काम है। फिर पिता इधर उधर खोज करके के उसको धमकाता है और वहां गुरु के पास जाकर आदर कर देता है। इस प्रकार कोशिश करते करते वो लड़का गुरु जी के पास विशेष रहने लगा और गुरु जी की बातों को सुनते सुनते उसे उसकी रुचि हो गई। अधिक रुचि होने पर फिर वो लड़का वहां ही रहने लगा तो उसका एकदम सुधार हो गया। ये बात देखने में भी आती है, हम लोग लड़के को गुरु जी के पास में पढ़ाते हैं तो आरंभ के बीच के वहां वो पाठशाला में जाना नहीं चाहता। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि गुरु के यहां पहुंचाने के लिए ये हम लोगों की जिम्मेवारी रहती। तो लड़का जो है मौका पाता है तभी खेल कूद उसको अच्छा लगता है, लड़कों में भाग जाता है। किंतु जब उसको विद्या का स्वाद आता है और विद्या उसको प्यारी लगने लगती है तब फिर वो इस प्रकार से इतना नहीं भाजता। और आगे जाकर के जब विद्या उसको विशेष प्रिय लगने लगती है तो उसके ऐसे लग जाता है और वो खुद ही एक प्रकार से पढ़ने के लिए तत्पर हो जाता है। आरंभ की और अंत की अवस्था में रात दिन का फर्क हो जाता है। इसी प्रकार से थी हम लोगों को ये बात शिक्षा के विषय में घटानी चाहिए। ये हमारा जो मन है चंचल मन, ये तो उदंड और चंचल बालक के समान है। और परमात्मा जो है वे आचार्य हैं और ये जीवात्मा जो है ये इसका पिता है। तो इस शरीर के बीच के मां जो जीवात्मा है उसका ये कर्तव्य है, ये चंचल जो मन है इसकी जो आदत बिगड़ी हुई है उसके सुधार करने के लिए उसकी निगरानी करनी चाहिए और गुरु जी के पास ले जाकर बैठाना चाहिए। गुरु जी कौन है? परमात्मा, यानी परमात्मा के मां इसको लगाना चाहिए, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, परमात्मा के नाम और रूप का चिंतन करना चाहिए, परमात्मा के गुणों का चिंतन करना चाहिए, परमात्मा की जो लीला उसका दर्शन करना चाहिए। तो लड़का जो जैसे गुरु जी के पास में रहता है तो गुरु जी के चरित्रों को देखता रहता है, उनके गुणों की तरफ ख्याल रखता है, उनके उपदेश की तरफ ख्याल रखता है। पिता की आज्ञा है उसको कि गुरु जी बड़े उच्च कोटि के पुरुष हैं, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। इसी प्रकार से थी जो भगवान है वे यहाँ गुरु के स्थान में आचार्य के स्थान में है। तो भगवान के गुणों से शिक्षा लेनी, चरित्रों से शिक्षा लेनी और भगवान का जो स्वरूप है उसकी तरफ ख्याल रखना और भगवान की आज्ञा का पालन करना, भगवान जो उपदेश देते हैं उसका पालन करना। गीता जो है भगवान का उपदेश है और शास्त्र जितने हैं वे भी सब भगवान का उपदेश है, क्योंकि भगवान ने जो कुछ आदेश दिया है मात्र के आरंभ के मां ब्रह्मादिकों को उसी के अनुसार संसार के बीच के मां शिक्षा का प्रचार हुआ है। वेदों का जो प्रागट्य है वो ब्रह्मा जी से हुआ और उसी का जो एक प्रकार से भाव है ऋषियों ने प्रकट किया। तो वेद जो श्रुति है, ऋषियों का वचन जो स्मृतियां है और इतिहास पुराण ये भी सब ऋषियों के ही वचन है। विचारने से सब भगवान के ही वचन है ऐसा समझ करके और उनके अनुसार अपना जीवन बढ़ाना। जब इस जीवात्मा को उसका रहस्य समझ में आएगा, तत्व समझ में आएगा, तब तो ये खुद ही एक प्रकार से थी अपने मन को इसी काम के मन लगाता रहेगा। और मन के भी ये बात समझ में आ जाएगी कि हमारे लिए बहुत हित है। बुद्धि के द्वारा मन को समझाया जाएगा, ये बात समझ में आ जाएगी, या यूं कहिए आत्मा के द्वारा मन बुद्धि को ये बात समझाई जाएगी। मन और बुद्धि ये दोनों एक प्रकार से थी अंतकरण है और अंतकरण बुद्धि एक प्रकार से जब निश्चय का काम करता है तो उसका नाम बुद्धि है, और मनन का काम करता है तो उसका नाम मन है। दोनों को लेकर के एक ही वस्तु या अंतःकरण है, तो इसके सुधार की बड़ी आवश्यकता है। इसमें जो चंचलता वो स्वाभाविक ही है, वो ये स्वभाव का सुधार हो सकता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा है, योगस्य स्मृति निरोध, जिसकी वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। यदि जिसकी वृत्तियों का निरोध नहीं होता तो समझो कि महर्षि पतंजलि इस प्रकार से कहते ही नहीं, और गीता में भगवान नहीं कहते, मन को स्थिर करने के लिए भगवान भी नहीं कहते, और मन को बसवा करने के लिए भी भगवान नहीं कहते। आत्म समस्त मने कृत्वा न किंचित विचिन्तयेत्, मन को आत्मा मस्थिर करके और मन के द्वारा और फिर किसी भी चीज का चिंतन नहीं करना चाहिए, ये भगवान ने आदेश दिया है। गीता के छठे अध्याय के 24 के श्लोक के उत्तरार्ध ने, और अभ्यास न तो कौन थे वैराग्य ने गृह थे, ये कौन थे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये मन बसवा होता है, पकड़ा जाता है। इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि ये मन स्थिर भी होता है और बसने भी होता है, क्योंकि ये चंचल है, उद्दंड है। इसलिए इसके बसवा करने के वास्ते विशेष प्रयत्न करना चाहिए। विशेष प्रयत्न करने से कोई ये बात असंभव नहीं है। इंद्रियों को रोकने में इतनी कठिनाई नहीं है, मन को रोकने में इसके कुछ विशेष परिश्रम है, किंतु मन रुक जाता है। जैसे हमारी वाक इंद्रिय है, हम मौन धारण कर ले में चुप हो जावे तो बोलना बंद हो जाता है, वाणी रुक जाती। हम आंखों से देखते हैं, पदार्थ देखते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं, आंख मीच लेते हैं, तो बाघ का दृश्य देखना बंद हो जाता है।